بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام گھرانہ اور میں اس پروگرام کی ہوسٹ خیرالنساء. امید کرتے ہیں ہمارے پیارے سے ناظرین جہاں کہیں بھی ہوں گے اور جہاں کہیں سے بھی ہمارے اس پروگرام کو ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، انشاءاللہ تعالی خیر و عافیت سے ہوں گے. ناظرین، اس خوبصورت دعا کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کہ خداوند متعال آپ کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے، آپ خوش و خرم رہیں اور آپ کو خداوند متعال کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، الہی آمین. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں، آج ہم ایک مرتبہ پھر بات کریں گے اپنے پروگرام میں اسی ٹاپک پر کہ جس پر ہم نے پچھلے ہفتے بھی گفتگو کی، یعنی مشورہ اور مداخلت کے بارے میں. جی ہاں ناظرین، ہم عموماً یہ سنتے رہتے ہیں اور عموماً یہ کہا بھی جاتا ہے کہ عورت سے ہی گھر بنتا ہے، اور یہ حقیقت ہے، اس پر ذرا بھی ہم اعتراض نہیں کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے لڑائی جھگڑے اور اختلافات گھریلو تنازعات کی بہت بری شکل اختیار کر لیتے ہیں، تو اس کے خاتمے کا انحصار بھی خواتین کے اوپر ہے. یعنی اگر خاتون کے اندر برداشت کا اسٹیمنا زیادہ ہو جائے تو گھر کے ماحول کو وہ خوشگوار ماحول اور پرسکون ماحول دے سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہیں گے اگر ایک لڑکی اپنے سسرال میں آتی ہے تو وہاں پر اس کے برداشت کی نوعیت اپنے گھر کے برداشت کی نوعیت سے بالکل قطعی فرق کرتی ہے. اور یہ کہتے چلیں کہ ایک خاتون جو سمجھدار ہوتی ہے اور عقل مند ہوتی ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے گھر کو خوشگوار رکھے، تو یہاں پر اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ، اسپیشلی سسرال میں سسر کے ساتھ اور ساس کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا کردار رکھے، اور اس طریقے سے ان کے ساتھ میل جول رکھے کہ جس طرح وہ اپنی ایک ماں اور اپنے باپ کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے. جی ہاں ناظرین، اور اگر ایک لڑکی یہ دیکھتی ہے کہ بے عنوان بہو اگر اسے کوئی اپنے گھر میں اپنے سسرال میں کوئی مشکل پیش آئی ہے، تو وہ اپنے ساس اور سسر کے ساتھ اس بات کو شیئر کرے اور اس مسئلے کا کوئی راہ حل نکال لے، اور ہرگز والدین یعنی جو ساس سسر ہیں ان کو ان کی دل آزاری نہ کریں، ان کو رنجیدہ دل نہ کریں، انہیں ہمیشہ خوش رکھنے یہ کوشش کریں، کیونکہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ گھر میں مایہ خیر و برکت کا وسیلہ ہوتے ہیں، انہیں خوش رکھیں، انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی میں ایک مثبت چینجنگ آئے گی. تو ہمارے ساتھ رہیے، اس خوبصورت سے ٹاپک پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے لیکن آمنہ کے اس چھوٹے سے سیگمنٹ کے بعد. آمنہ، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟
وعلیکم السلام،
کیسی ہیں؟
الحمدللہ، شکر خدا. آپ سنائیں؟
الحمدللہ، دعائیں آپ کی، آپ پروگرام کو شروع کریں.
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. السلام علیکم ناظرین، آج بروز ہفتہ 17 جنوری 2015 25 ربیع الاول کا دن ہے، اور آپ سب ناظرین براہ راست اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران کے مقدس شہر کم المقدس سے، اور اس موقع پہ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید عرض کرتی ہوں. میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ علی، اور آپ کے لیے آج پھر کچھ مفید اور دلچسپ خبریں لے کر آئی ہوں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی. جی ناظرین، چلتے ہیں اپنے میسیجز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ہمیں کیا بھیجا ہے. سب سے پہلے میں اپنے ان ناظرین کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے فیس بک پر ہمارے اس پروگرام کو بہت پسند کیا ہے، اور واٹس ایپ پہ ہمیں بہت سارے پیغامات دیے ہیں کہ اتنے پیغامات ہم پڑھ نہیں سکتے، وقت کی کمی کی وجہ سے کچھ کو بیان کریں گے آپ کے سامنے. ہمیں لکھتے ہیں انڈیا سے حسن مہندی صاحب، لکھتے ہیں السلام علیکم، آپ کا پروگرام گھرانہ بہت اچھا ہے اور میں بہت دلچسپی سے اس پروگرام کو دیکھتا ہوں. آپ سے ایک التجا بھی ہے کہ اگر آپ بچوں کے لیے کوئی درسی پروگرام رکھیں تو بہت ہی بہتر ہوگا. آپ کا مشکور، حسن مہندی. اور ہمیں لکھتی ہیں شگفتہ کشمیر سے، کہتی ہیں کہ آپ کا پروگرام میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ اس کو کبھی بھی چھوڑوں نہیں، اور ہماری پوری ٹیم کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب ناظرین کا کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس پروگرام کو پسند کیا ہے، اور اسی طریقے سے اپنے پیغامات ہمیں دیتے رہیے گا. بہت شکریہ. چلتے ہیں چھوٹے سے وقفے کی طرف.
اب کا عقل اور مذہب دونوں ہی کسی کی بھی خصوصی زندگی میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتے۔ ماں باپ کو بھی بچوں کی زندگی میں مداخلت کا اتنا ہی حق ہے کہ جتنا ضروری اور ان کی مصلحت میں ہے، ورنہ اگر ماں باپ یا ساس سسر نے میاں بیوی کی زندگی میں دخل اندازی کر کے اسے تلخ بنایا تو یہ گناہ عظیم اور خدا کی ناراضگی کا سبب ہے۔ دوسری طرف بچوں پر بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس طرح کے برتاؤ کو برداشت کر کے والدین اور بزرگوں کا احترام باقی رکھتے ہوئے کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کریں کہ ان کے جذبات کو بھی ٹھیس نہ پہنچے اور میاں بیوی کی زندگی بھی پریشانیوں سے دوچار نہ ہو۔
جی ناظرین، دوبارہ پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو۔ چلتے ہیں اب اپنی پہلی خبر کی جانب۔ بیجنگ شنگھائی انسٹیٹیوٹ آف کینسر سے تعلق رکھنے والے تحقیق دانوں نے انکشاف کیا ہے کہ کھانوں میں زیادہ فائبر کا استعمال انسان کو بیشتر بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور ایسی غذا کھانے والوں کا کسی بھی بیماری سے مرنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر انسان صحت مند اور لمبی زندگی چاہتا ہے تو فائبر والے کھانوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرے۔ ان کے تحقیقات کا جب تفصیلی معائنہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں کو کھانوں میں فائبر کی مقدار کے حساب سے تقسیم کیا گیا تو نتائج سامنے آئے کہ خوراک میں فائبر کے 10 گرام اضافے کے ساتھ کسی بھی بیماری سے موت کے امکانات 10% کم ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ فائبر سبزیوں، پھلوں، ڈرائی فروٹ اور چنے میں جیسی خوراکوں میں خاص طور پر زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس بات پر عمل کریں گے۔ چلتے ہیں خیر النساء کے سیگمنٹ کی طرف۔
بہت شکریہ امنہ علی آپ کا۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم ایک مرتبہ پھر بات کریں گے ایک بہت ہی گرما گرم موضوع پر، اور وہ ہے مشورہ اور مداخلت، یعنی والدین کو اپنے بہو اور بیٹے کی زندگی میں اور دوسری طرف بیٹی اور داماد کی زندگی میں کس حد تک مداخلت کرنی چاہیے یا کرنی چاہیے بھی یا نہیں۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اسلامی اسکالر امرین فاطمہ علوی صاحبہ۔ آئیے ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور سوالات کا باقاعدہ سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ محترمہ امبین فاطمہ علوی صاحبہ، السلام علیکم، آپ کو اپنے پروگرام میں بھی بہت بہت خوش آمدید عرض کرتی ہوں۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آپ کا بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ نے ٹائم دیا اور ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں۔ سب سے پہلا میرا سوال، کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ پچھلے پروگرام سے اس کا ریلیٹڈ ہے بالکل، پوچھنا چاہوں گی۔ ٹوٹلی بات ہوئی تھی ہمارے پچھلے پروگرام میں، ایک کلی طور پر جزئی طور پر ہم رشتوں میں وارد نہیں ہوئے تھے، یعنی ہم نے بہت ہی جزئی طور پر بات چیت نہیں کی تھی اس ٹاپک پر۔ تو سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گی ساس اور بہو کے حوالے سے کہ کس حد تک ساس کو ایک ماں ہونے کے اعتبار سے اپنے بیٹے اور بہو کی زندگی میں مداخلت کرنی چاہیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ساس جو کہ بیٹے کی شادی سے پہلے صرف ایک ماں ہوتی ہے، اپنے بیٹے کی ماں۔ اب یہ ماں جب اس کا بیٹا جوان ہوتا ہے تو اس کے دل میں ارمان جاگتے ہیں کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، ماشاءاللہ کمانے لگا ہے، اب مجھے اس کی شادی کرنی چاہیے۔ شادی کے لیے اب وہ لڑکیاں ڈھونڈنے شروع کرتی ہے کہ کوئی ایسی لڑکی جو میرے بیٹے کے قابل ہو، ایسی لڑکی مجھے چاہیے۔ اس کے لیے جو ہے وہ کیا معیار ہے، ہمارے معاشرے میں دو طرح کے معیار پائے جاتے ہیں۔ پہلا معیار جو کہ افسوس کے ساتھ اکثریت کی سوچ ایسی ہے کہ انہیں کیسی بہو چاہیے جو زیادہ سا جہیز لے کے آئے، بہت خوبصورت ہو، جاب کرتی ہو، ایسی بہو ہمیں چاہیے۔ اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ بعد میں جب یہی بہو گھر آتی ہے، اب زیادہ سا جہیز بھی آ جاتا ہے، گھر بھر جاتا ہے، بہو بہت خوبصورت ہے، آنے والے بہت تعریفیں کرتے ہیں، واہ آپ تو چاند لے آئی ہیں، چاند کا ٹکڑا نہیں، پورے کا پورا چاند آپ لے آئی ہیں اپنے گھر میں۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ کی بہو جاب کرتی ہے، ہر منتھلی اتنی سیلری ہے اس کی، وہ سب چیزیں۔ لیکن وہ ایسی لڑکی آیا گھر میں ایڈجسٹ کر پائے گی، ہمارا گھر، ہمارے گھر کا ماحول آئے گی یہاں ایڈجسٹ کر پائے گی یا نہیں، یہ چیز نہیں سوچتے۔ دوسرا جو معیار ہے وہ ماں باپ کہتے ہیں کہ ہماری بہو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ نیک سیرت ہونی چاہیے۔ اگر بہت خوبصورت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کا خوبصورت ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کی نشو نما، اس کی پرورش، اس کی تربیت کس فیملی میں ہوئی ہے، اس کی فیملی کا بیک گراؤنڈ اخلاقی حوالے سے کیسا ہے، हमें ज़्यादा जहेज नहीं चाहिए, हमें जो है वो एक अच्छी तरबियत वाली लड़की चाहिए जो कि हमारी आइंदा नस्ल को संवार सके। क्योंकि बहू सिर्फ एक लड़की नहीं है, बल्कि आप एक ख़ानदान के साथ रिश्ता जोड़ रहे हैं। आपकी आइंदा नस्ल किस तरह की निकलेगी वो आपकी बहू पे डिपेंड करता है कि वो आया इस्लामी अकदार की हामिल है नहीं है, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है।
बिल्कुल,
तो ये
अमीर
सब
फातिमा अलवी
चीजें
साहिबा, आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ बिल्कुल। आज से अगर हम चंद साल पहले अपने माशरे को देखें, जब रिश्ता लेकर जाया जाता था तो बाकायदा उनके खानदान के ऊपर निगाह होती
खानदान
थी, लेकिन अब अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ या डिग्रियां देखी जाती है या पैसे को मद्देनजर रखा जाता है।
अब ये देखा जाता है कि माशरे में उसका मकाम कितना
सही,
बुलंद है। तो ये तो हो रही थी कि बहू चुनने का अंदाज क्या है। अब वही माँ जब बेटे की शादी बहुत धूमधाम से करती है और सास बन जाती है, तो यहाँ पे उसको बहुत सी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर एक, कि वो आने वाली लड़की बहुत सी तवक्कुआत लेके आई है।
सही,
ये नहीं कि मतलब वो एक लड़के के लिए वो अपने सारे रिश्ते छोड़ के आई है, अपनी माँ बाप बहन
बहन
भाई,
भाई
और
बिल्कुल,
इस उम्मीद पे आई है कि यहाँ पे ये जो खातून है ये मेरी माँ है, मेरे शोहर की माँ है, यानी मेरी भी माँ
माँ
है।
है सही,
यहाँ पे ये जो मर्द है ये मेरा बाप है, मेरे शोहर के बहन भाई मेरे बहन भाई
भाई है
हैं।
बिल्कुल।
तो इसमें सास बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। एक तो ये कि बहू को उसकी पसंद का माहौल फराहम करे, उसके
सही,
आराम का ख्याल रखे शुरू के दिनों में, और जो है वो अपने बच्चों से कहे कि देखो इसको अपनी बहन समझना, भाभी समझने की बजाय। और सबसे बढ़ के
सही
शोहर और बीवी के जो पर्सनल मामलात हैं उनमें ज्यादा इंटरफेयर
ना
ना
जाए
करे।
बिल्कुल,
ये नहीं कि तुम जो वो इतनी देर तक क्यों सोई रहती हो, तुम्हें जो है वो आज फलां कपड़े पहनने चाहिए थे तुमने ये पहने हैं, तुम अपने शोहर के साथ कहाँ पे जा रही हो। देखें, शुरू में अगर हम चंद चीजों का ख्याल रखें तो हमारी आइंदा की जिंदगी बहुत पुरसकून गुजर
सही
सकती है।
बिल्कुल,
वो जो एक लड़की के अपनी ससुराल में शुरू के दिन होते हैं वो उसके जहन से तमाम जिंदगी एक यादगार रहते हैं उसके जहन पे, अगर वो अच्छे गुजरे हों तब भी और अगर वो बुरे गुजरे हों उस सूरत में भी। लेकिन हमारा हमारे माशरे का मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है? हाँ, बहुत सी माएँ ऐसी हैं जो वाकियन सास नहीं माँ बन के दिखाती हैं, और हमें फख्र
सही
है ऐसी माओं पे कि जो
सही
देखिए अपनी बेटी के लिए तो हर कोई माँ बन सकता है,
सही
आप बहू के लिए, आप दामाद के लिए माँ बन के दिखाएं,
सही बिल्कुल,
अपने बच्चों के लिए माँ बनना खूब, वो कुदरत ने फितरी तौर पे आपके अंदर
वो एक
मानता
जज्बा
का
रखा है
जज्बा
बिल्कुल,
रखा है। अपने बच्चों के लिए माँ बनना वो आपका एक फितरी अम्र है, आप
सही
जो है वो अपनी बहू के लिए माँ बन के दिखाएं। हाँ, हमें फख्र है ऐसी माओं पे जो वाकई माँ बनती हैं।
और यहाँ पर भी
लेकिन
एक सास साहिबा का एक मेरे ख्याल में एक बहुत ज़रूरी उनके ऊपर है कि वो जब नई नवेली दुल्हन को एक बेउनवान बहू लेकर आते हैं तो अपने घर के तमाम रहन सहन तौर तरीके और रस्म अंदाज जो भी हैं वो अपने बहू तक मुंतकिल करें और अपने तवक्कात को इससे पहले कि वो बड़े बड़े तवक्कात बांधें वो उसे बताएं कि मैं तुमसे क्या चाहती हूँ।
अमल के
ठीक
जरिए,
है,
यहाँ पे भी
बिल्कुल
मैं तो सही करूंगी कि अमल के जरिए, ना
सही
ये कि जो है वो बकायदा रोक टोक। देखो, हमारे घर का कानून बास जगहों पे देखा गया है, खुद मेरी
सही
आंखों देखा वाकया है कि शादी के पहले दिन बहू को नाश्ता नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ 8 बजे नाश्ता हो जाता है, तुम 8:15 बजे कमरे से बाहर निकली हो।
सही
तो खूब आपने बहू को बताया 8 बजे, चले आप उसे कहें कि बेटा आज ये हो गया, आइंदा से इस तरह। अब आप देखें, जिसको पहले दिन ससुराल में नाश्ता नहीं मिला वो सारी जिंदगी उसके जहन में यही रहेगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे नाश्ता नहीं दिया, या इस तरह की। और
सही
बहुत सी छोटी छोटी चीजें जो
सही
बहू के जहन पे बहुत असरअंदाज होती हैं। देखें, सास जो है वो क्यों बहू के मामलात में ज्यादा रोक टोक करती है, हमें इसके असबाब और वजूहात को देखना चाहिए कि एक सास क्या चाहती है।
सही
एक सास जिसकी जो है एक घर पे हुक्मरानी थी, क्योंकि अमलन सास की एक पूरा होल जो है वो सास का होता है घर पे। अब
सही
जब बहू आती है तो शायद उस सास को अपनी हुक्मरानी खतरे में नजर आती है, कहती है
सही
कि नहीं अब जो है ये मेरे हाथ से आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगी, क्यों? मेरी एज भी ज्यादा हो गई है,
सही
मेरी बहू मेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी है, वो जवान है, एक्टिव है, तो आहिस्ता आहिस्ता सब जो है वो उसकी तरफ मायल होते जाएंगे, उससे मशवरा मांगेंगे, तो और जो है वो हर मामले में उससे जाके पूछेंगे, तो मेरी जो हुक्मरानी है वो खतरे में पड़ गई है।
मेरे
नहीं,
ख्याल में अगर अमीर फातिमा अलवी साहिबा, शायद ये सारे जो रोक टोक है, ये जो हुक्मरानी है, शायद इस बेस पर है क्योंकि उस पर तजर्बे में ज्यादा है,
ठीक है, हाँ वो हमारी
ये तो
माँ की
बहू
जगह
को सोचना चाहिए ना। अभी
सही
हम सास की बात कर रहे हैं कि सास को क्या करना चाहिए।
जी
ये कि अगर बहू सास से मशवरा ले बहुत अच्छी बात है, लेना भी चाहिए,
सही
क्योंकि अगर इसके पास डिग्री है तो उसके पास तजुर्बा है,
बिल्कुल
उसने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो गुजारी है, उसको उस जमाने की ऊंच नीच का पता है। तो ये
बिल्कुल
बहू का काम है सास को इज्जत और एहतराम देना, उससे मशवरा लेना, हर काम में उससे पूछना। लेकिन सास को क्या करना चाहिए, अगर बहू नहीं पूछती उसको प्यार से समझाइए, आप
सही
उसे मशवरा दीजिए। ये नहीं बकायदा ये नहीं कहिए कि नो ऐसे नहीं करना, तुम ऐसा नहीं कर सकती। हमारी मुश्किल ये
सही
है कि हम ये कहते हैं कि ऐसा नहीं कर सकती हो,
सही
हमारे खानदान के रस्मों रवाज के खिलाफ है। या जो है वो ज्यादा मसले बनते हैं किचन और किचन के बजट की वजह से।
बिल्कुल अमीर फातिमा अलवी साहब, इन तमाम अमल के पीछे ये हतमन हम यूँ कह सकते हैं कि एक चाहत, एक वो बेलोस मोहब्बत, बेगरस मोहब्बत पोशीदा है कि वो चाहती है कि हमारे घर में यानी एक ऐसा पुरअमन माहौल बरकरार हो कि जो बाद में हम ये देखते हैं कि जो बहू को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। बहरहाल हम तमाम सास वो जो इस प्रोग्राम को देख रही हैं, हम उनकी अनथक मेहनत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हतमन अपने बेटे और अपने बहू का बहुत अच्छा चाहती हैं और भला चाहती हैं। खुदा आपको ज़िंदगी दे, खुदा आपको तूले उम्र दे और खुदा आपका साया हमारे सरों पर बरकरार रखे। और इसी के साथ चलते हैं आमना के एक सेगमेंट की तरफ। जी आमना
जी। नाज़रीन, जैसा कि हमने देखा कि हमारी इस्लामी तालीमात और मासूमीन के फरामीन में हमें इस बात का जिक्र नज़र आता है कि अगर बचपन ही में अपने बच्चों की अच्छी नशोनुमा की जाए या उनको कुरान हिफ्ज़ कराया जाए या जो भी अच्छी बात सिखाई जाए, तो वो बच्चों के जहन में एक ऐसी मसलन लिख दी जाती है जैसे पत्थर के ऊपर लकीर होती है, वो बच्चे कभी भी नहीं उस बात को भूलते। और अब साइंस हमें क्या बतलाती है, हमें साइंस बताती है कि अब हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हमारे जहन में हर बात जो है वो याददाश्त क्यों नहीं रहती, हमारी इतनी यानी अच्छी याददाश्त क्यों नहीं है। तो हम देखते हैं कि साइंसदान इस मामले में क्या बात करते हैं। हम सबकी ये ख्वाहिश होती है कि याददाश्त हमारी अच्छी रहे, तो इस मकसद के लिए हम मुख्तलिफ गजाओं का इस्तेमाल भी करते हैं, और ये बात भी ठीक है, लेकिन माहिरीन इसका क्या ख्याल है वो देखते हैं। चंद आसान बातों पर अमल किया जाए जो हमारी याददाश्त बहुत तेजी से अच्छी करते हैं। इनमें से ये कि अपने मोबाइल फोन के नंबर को याद किया जाए, जो भी आपके मोबाइल फोन में नंबर्स हैं उनको बार बार याद करें और उसको हिफ्ज करने की कोशिश करें। इसकी क्या खासियत होगी कि इंसान के दिमाग के अंदर एक ऐसी खासियत मौजूद है कि उस पर जितना भी ज्यादा जोर डाला जाएगा इतना ही अच्छा काम करता है। अगर आप अपने फोन नंबर्स को और मोबाइल के नंबर्स को याद करना शुरू कर देंगे तो आपका दिमाग अच्छी तरीके से काम करना शुरू हो जाएगा और आपकी वो याददाश्त वाला जो हिस्सा है वो हिफ्ज करने लगेगा, यानी हर नंबर को उसके अंदर महफूज करेगा। इसके अलावा आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसको दोहराएं। आजकल के जदीद दौर में मालूमात बहुत तेजी से बढ़ रही है, हर तरफ इंटरनेट या किताबें मौजूद होती हैं, और शायद आप लोग भी किताबें पढ़ने के शौकीन हो। कोशिश ये करें कि जो भी किताब पढ़ रहे हैं उसके मतालिब को हिफ्ज करने की कोशिश करें, उसको दोहराएं। जितना आप दोहराएंगे तो वो दिमाग में जो आपका एक खाना है वो उसको हिफ्ज करने की कोशिश करेगा और उसको अपने जहन में महफूज रखेगा। इसी तरीके से इंसानी दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं कि जो वो इंसान जब तक कि उसको कोशिश ना करे, उसके ऊपर जोर ना दे, तो वो याद नहीं रहती हैं और महफूज नहीं रहती हैं। लेकिन अगर हम याद रखने की कोशिश ना करें तो वो भूलना भी शुरू हो जाती हैं। लिहाजा वक्तन फवक्तन उसको दोहराते रहें और उसको याद रखें। चलते हैं छोटे से ब्रेक की जाने।
सबको खुशामदी दर्ज करती हूँ। नाज़रीन, जहाँ तक बच्चों का सवाल है तो हम देखते हैं कि बच्चों का मिजाज ही कुछ ऐसा होता है कि जब उनको एक चीज़ चाहिए होती है, पता वो उनके लिए नुकसानदेह हो या फ़ायदेमंद हो, वो इस चीज़ को, क्योंकि उन्हें सोच समझ नहीं है इस चीज़ की, फिर भी वो उस चीज़ को हासिल करने के लिए ज़िद करते हैं, मुख्तलिफ बहाने बनाते हैं। तो बच्चों में बहाने की इस आदत को हम किस तरह से संभाल सकते हैं, इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए मिलकर इस रिपोर्ट को देखते हैं।
عام طور پر چھوٹے بچے زیادہ بہانہ بناتے ہیں کیونکہ انہیں صحیح سے بولنا نہیں آتا اور وہ اپنی ضرورت کو صحیح طرح بیان نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں صحیح سے بولنا نہیں آتا۔ ایک سے تین سال کے بچے زیادہ بہانہ بناتے ہیں اور یہ ان کے ناامیدی کی وجہ سے ان کے ایج کا تقاضا ہے۔ حتیٰ بڑے بھی جب ناکامی کا شکار ہوتے ہیں تو پھر وہ بہانہ بنانے لگتے ہیں یا ضدی ہو جاتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے ان کے بہانہ بنانے کی وجہ ڈھونڈنی چاہیے۔ جیسے اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہو اور وہ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا تب وہ بہانہ بنانے لگتا ہے یا رونے پٹنے لگتا ہے، یا اگر اسے کچھ سیکھنا مشکل ہوا ہو تب بھی وہ بہانہ بنانے لگتا ہے، یا اگر تھکا ہوا ہو یا اسے نیند آ رہی ہو یا اسے بھوک لگ رہی ہو، تو ان مواقع پر ممکن ہے بچہ بہانہ بنانے لگے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان عوامل کے وقوع سے پہلے ہی ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کریں تاکہ انہیں بہانہ بنانے یا رونے پیٹنے کا موقع نہ ملے۔ جیسے مثال کے طور پر جب بچہ کھانا کھانے سے پہلے ٹافی کھانا چاہتا ہے تو پھر اس سے محبت اور پیار سے یہ سمجھایا جائے کہ اگر آپ کھانا کھانے سے پہلے ٹافی کھاؤ گے تو پھر یہ آپ کے صحت کے لیے مضر ہے اور آپ صحیح سے کھانا بھی نہیں کھا سکو گے، تو اس ٹافی کو کسی ایسی جگہ رکھ دیں جہاں پہ جہاں اس کی نظر پڑے، یعنی جہاں اس بچے کو ٹافی نظر آ رہی ہو، اور کھانا کھانے کے بعد اس کو ٹافی دلا دی جائے۔ ناظرین، اب تک آپ نے اس رپورٹ میں دیکھا کہ بچے کس طرح سے بہانہ بناتے ہیں، ان کے بہانہ بنانے کی وجوہات عوامل کیا ہیں، اور اسی طرح والدین کے لیے کیا رائے حل ہے، وہ کس طرح سے بچوں کی اس عادت کو، بہانے بنانے کی عادت کو کس طرح سے سنبھال سکتے ہیں۔ آئیے مزید اس رپورٹ کو دیکھتے ہیں۔
بچے کو ٹائم پر کھانا کھلایا جائے اور ٹائم پر سلایا جائے، کیونکہ بچوں میں صبر و تحمل بڑوں کی نسبت کم ہوتا ہے، تو بچے اگر ٹائم پر کھانا کھائیں اور ٹائم پر سو جائیں تو پھر ان کی نیند بھی پوری ہو جاتی ہے اور تھکاوٹ بھی انہیں محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ اکثر بچے جو ہے تھکاوٹ کی وجہ سے بھی بہانہ بنانے لگتے ہیں کیونکہ وہ اپنی ضرورت کو بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں عام طور پر چھوٹے بچوں کا ہم نے کہا تھا کہ وہ زیادہ بہانہ بناتے ہیں کیونکہ انہیں صحیح سے بولنا نہیں آتا، اس لیے ہم ٹائم پر اس کو کھانا کھلائیں اور ٹائم پر ہی اس کو سلائیں۔ ٹائم پر کھانا کھلانا اور ٹائم پر سلانے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب بچہ رات کو ٹائم پر سوتا ہے تو پھر صبح بھی وہ ٹائم پر اٹھ سکتا ہے، کیونکہ اس کی نیند پوری ہو چکی ہے اور اس میں کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی، کیونکہ بچہ جو ہے اگر رات کو دیر سے سوئے تو پھر وہ صبح اسکول جانے سے مکر جاتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ ایسے بچوں میں سے ہو جو کہ زیادہ بہانہ بناتا ہے، تو پھر جب آپ کا بچہ اچھے موڈ میں ہو تو پھر اسے اپنے آغوش میں لیں اور اسے محبت سے یہ سمجھائیں کہ آپ کتنا اس سے چاہتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچے سے اپنی محبت کا دل سے اظہار کریں تو پھر آپ کا بچہ یہ جان لے گا کہ وہ میرے پیرنٹس مجھے دل سے چاہتے ہیں، تو جب یہ جان جائے تو وہ جھوٹ بولنے پر مجبور نہیں ہوتا یا بہانے بنانے پر مجبور نہیں ہوتا۔
ناظرین، آپ نے اس رپورٹ میں دیکھا کہ بچے کی اس بہانہ بنانے کی عادت کو ہم کس طرح سے سنبھال سکتے ہیں، اور والدین کو کن کن نکات کی طرف اشارہ کرنا چاہیے، کن کن نکات کی طرف ان کو اہمیت دینی چاہیے، جن پر عمل کرتے ہوئے وہ بچے کی اس عادت کو، بہانہ بنانے کی عادت کو سنبھال سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی رپورٹ پسند آئی ہوگی اور آپ اس رپورٹ سے ضرور مستفیض ہوئے ہوں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے پروگرام گھرانہ۔
جی، خوش آمدید عرض کرتی ہوں دوبارہ اپنے ناظرین کو اس پروگرام میں۔ नाज़रीन, हमारे जहन में एक बात बहुत उठती है कि आया खाने के दरमियान या खाने के साथ पानी पीने के इंसानी जिस्म पे कुछ मुज़र असरात होते हैं। ये बहुत हमारे जहन पर ये बात जो होती है वो बार बार वो करती है, और बच्चे भी इस बात में जब माएँ अपने बच्चों को इस बात से टोकती हैं कि खाने के दरमियान या खाने के साथ साथ हर निवाले के साथ पानी को ना पियो, तो वो आगे से यही पूछते हैं क्यों, क्या वजह है। तो इसको जानने के लिए हम देखते हैं कि माहिरीन ने तिब्बी माहिरीन ने हमारे लिए क्या तहकीकात की है। खाने के दरमियान पानी पीना पेट में मौजूद एसिड और एंजाइम्स को कमजोर बना देता है और इनके खाना हजम करने की सलाहियत कम हो जाती है। लिहाजा बेहतर यह है कि खाने से पहले 1 घंटा पहले या 45 मिनट पहले पानी पी लिया जाए। इनका कहना यह भी है कि मोटे अफराद को हम जरूर ये मशवरा देते हैं कि वो खाने के दौरान पानी ना पिए। वजन कम करने के ख्वाहिशमंद लोग खाने से तकरीबन 1 घंटा कबल पानी पी लें और खाने के दौरान या फौरन उससे इज्तनाब करें। माहिरीन ये भी कहते हैं कि खाने के बाद पेट में एसिड की मिकदार इस कदर ज्यादा होती है कि पानी इन्हें कमजोर नहीं कर सकता, लेकिन बेहतर यह है कि अगर तलब हो तो खाने से पहले या 1-2 घूंट पानी पी लें तो मुजर नहीं होगा। तो इसी तरीके से हमारे मासूमीन का भी फरमान यही है कि खाने के बाद पानी ना पिया जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां लाहक हो जाती हैं जैसे मैदे की तकलीफ, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां इंसान में लाहक आ जाती हैं। चलते हैं खैरुनिसा के सेगमेंट की तरह।
जी हाँ नाज़रीन, हमारे समाज में खानदान को बहुत अहमियत दी जाती है जो हमारी तहजीब और अखलाकी मैार की गवाही देता है। ख़ानदान के बड़े बुजुर्ग छोटों की रहबरी करते हैं, उन्हें दर्स से अखलाक देते हैं और मुश्किल वक्त में बेहतर फैसले का मशवरा भी देते हैं। और हम देखें अगर अपने माशरे में हमें कई एक ख़ानदान ऐसे मिलेंगे कि जहाँ बच्चे बुजुर्गों की सरपरस्ती में परवान चढ़ते हैं और उनकी राय और उनकी नज़र को फोकियत देते हैं। तो हम अगर मुवाजना करें इन बच्चों का दूसरे बच्चों के साथ जो बुजुर्गों के सामने नहीं पलते हैं, तो एक खासा फर्क हम यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपने बुजुर्गों की, अपने वालिदैन की, अपने घर के तमाम बुजुर्ग अफराद की कद्र कीमत जानिए और उनकी एहतराम और उनकी खिदमत कीजिए और उन्हें खुदा रा होल्ड होम्स के हवाले ना कीजिए। जी हाँ नाज़रीन, हम इस गर्म गर्म मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारा साथ दीजिए और मज़ीद हमारे साथ चंद मिनट रहिए और इंशाल्लाह आप जानेंगे बहुत ही अच्छे नुकात कि जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी तब्दीली ला सकेंगे। ब्रीन फातिमा अलवी साहिबा, बात हो रही थी सास और बहू के रिश्ते के बारे में, और इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, एक कश्मीर से हमारे एक खाहर हैं, श्रीनगर से, उनका नाम हाजरा है। वो सवाल करती हैं अगर सास उनकी ज़िंदगी में, उनकी घरेलू ज़िंदगी में, मियाँ बीवी की लाइफ में, उनकी प्राइवेसी में अगर थोड़ा मुदाखलत करें, जबकि उनकी अपनी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत खलिश है मियाँ बीवी के दरमियान में, तो उस वक्त वहू का वजीफ़ा क्या है?
देखिए, यहाँ पे हमने सास की बात की है, वहीं पे मैं बहू की बात भी करने वाली थी। अच्छा हुआ कि ये सवाल खुद ब खुद आ गया और बहू की बात जो है इसी ज़िम्न में हो जाएगी। सास, उसने अपनी एक पूरी ज़िंदगी एक घर को दी है, अपने कुछ साल, 40 साल, हत्ता शायद इससे भी ज़्यादा उसने अपनी ज़िंदगी एक घर को दी है। वो घर उसने तामीर किया है। अब
सही।
हम ये कैसे तवक्को रख सकते हैं कि वो हमारे मामलात से बिल्कुल एक साइड पे हो जाए? नहीं, वो एक माँ है और उसे अपने बच्चे की फिक्र है।
सही।
देखिए, बाज़ुकात जो मुदाखलत होती है वो दिल सूजे की बुनियाद पे होती है,
सही,
इस दुख की बुनियाद पे होती है कि हमने इन दोनों को इकट्ठा किया, हम चाहते हैं
सही,
ये एक खुशगवार जिंदगी गुजारें, लेकिन जो है वो ये एक अच्छी जिंदगी नहीं गुजारे। शायद हमारे मशवरे से, हमारे मशवरे इनके काम आए और जो है वो ये
सही,
एक अच्छी लाइफ गुजारें। तो यहाँ पे शायद उनकी सास जो है वो दिल सूजी की बुनियाद पे उन्हें मशवरा दे रही है। तो ये उस बहू को ये देखना चाहिए कि मेरी सास क्या कह रही है। हमें रवायात में भी मिलता है, शायद वो अपनी सास से खुश ना हो, वो नहीं चाहती उनकी सास बोले, लेकिन रवायात में मिलता है कि ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या
क्या
कह
कह
रहा
रहा
है।
है बिल्कुल
आया वो जो कह रही है वो इनके फायदे में है, अगर तो इनके फायदे में है उस पे अमल करें, लेकिन अगर इनके फायदे में नहीं है तब भी जो है वो अपनी सास के साथ नरम लहजे में बात करें।
सही।
देखिए, इस्लाम कहीं भी बुजुर्गों के साथ बेहतरामी करने की इजाजत नहीं
नहीं
देता, और
देता
यहाँ पे
बिल्कुल
जो है आपका उस बुजुर्ग के साथ रिश्ता भी है, वो बुजुर्ग आपकी सास है, आपके ससुर हैं, तो जो है वो इस्लाम कतअन ये इजाजत नहीं देता कि आप उनके साथ बेहतरामी करें। लेकिन अगर उनकी रुकावट वाकई ना आपकी जिंदगी की मुश्किलात को मजीद बढ़ा रही है और आपको वाकई जरूरत है उनसे बात करने की, तो आप नरम लहजे में खुश अखलाकी के साथ और उनके इज्जत और एहतराम का ख्याल रखते हुए उनसे बात करें, या किसी दूसरे के तवस्सुत से बात करवाएं कि देखें आप, यानी जो दूसरा आगाह है आपके मसाइल से, कोई बुजुर्ग आपके खानदान का, कोई दूसरा बुजुर्ग जिनकी आपकी सास मानती हो, जिनका एहतराम करती हो, आप उनके जरिए भी कहलवा सकते हैं। अगर आप नहीं चाहती कि आप बकायदा तौर पे सामने आए अपनी सास के, तो आप ये वाला तरीका भी इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी करना है वो इज्जत और एहतराम के साथ।
बिल्कुल अमरीन फातिमा लेवी साहिबा, हम अमूमन मुल्की और सियासी सतह पर एक लफ्ज बहुत इस्तेमाल करते हैं, वो ये है कि मुज़ाकरात, यानी जहां दो फरीकें आपस में जब उनका कोई तनाजा पेश आता है तो वो मिलकर बैठते हैं और मसले का कोई हल निकालते हैं। इसी तरीके से बिल्कुल सास और बहू को भी, ये जो दो बहुत अहम और पाकीज़ा रिश्ता है, ये दो आपस में मिलकर बैठे हैं, यानी दर हकीकत ये माँ और बेटी का रिश्ता है।
और इस्लाम खुद भी हुक्म दे रहा है कि मियां बीवी के मसाइल में खानदान के किसी बुजुर्ग को डालो।
सही
कहते हैं कि तलाक आखिरी नौबत जो है वो तलाक, या उससे पहले पूरी कोशिश करो क्या मसलन बुजुर्गों को लेके आओ, वो बुजुर्ग जिसकी बात ये दोनों सुनते हो। यानी जब इतने अहम मसले में इस्लाम जो है वो मशवरे का हुक्म दे रहा है, तो आप अपनी सास से मशवरा कर सकती हैं। और अगर आप अपनी सास के साथ अच्छी हो, यानी कहते हैं अगर बहू सास के साथ अच्छी हो, तो अक्सर मवारिद में ऐसा पेश आता है कि सास और बहू आपस में इतनी अच्छी हैं कि बेटा अगर बहू के साथ कोई ज्यादती करता है तो बहू को खुद बोलने की जरूरत ही नहीं रहती, सास बोलती है देखो तुमने क्यों किया है। तो इंसान को जो है वो अपने ससुराल में कहते हैं अपनी सास की फेवर हतमन हासिल करनी चाहिए, जो है वो शुरू से ही जो है वो खुश अखलाकी के साथ पेश है। अगर इंसान खुश अखलाकी के साथ जिंदगी गुजारे, क्योंकि अच्छा अखलाक जो है वो तकरीबन इंसान की जिंदगी की आधी मुश्किलात को खुद ब खुद खत्म कर दे।
बिल्कुल, हम उन टोक टोक को जो हमें करती हैं उनको एक मुस्बत निगाह से देखें, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यहीं पर एक और एक सवाल है जो कश्मीर से, आज हमारे पास बहुत सारे सवालात हैं, कि एक लिखती है मैं एक ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ जिसमें मेरी सास और मेरे हस्बैंड के जो बड़े भाई हैं, यानी उसके जेठ जेठानी वगैरह भी उसके साथ रहते हैं। मेरा ये सवाल है कि ज्वाइंट फैमिली से अलग होना हमारे इस्लाम में गलत माना जाता है, इसके बारे में क्या इस्लाम की क्या राय है, क्या
नजर? यानी उन्होंने सवाल में क्या लिखा है कि उनकी माँ, उनके माँ बाप भी साथ रहते हैं या सिर्फ जेठ और जठानी?
नहीं, सास का भी लिखा है।
सास का भी लिखा है कि वो साथ रहती हैं। देखिए, सास जो कि उनके शोहर की माँ है और उनके शोहर की जिम्मेदारी है,
सही,
माँ की खिदमत करना बेटे पर फर्ज है, इसमें कोई शक नहीं है। इस्लाम कह रहा है, मुआशरा कहता है कि बेटे पे फर्ज है कि वो अपने माँ बाप की खिदमत करे और बढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा बने।
वबिलवालिदैन एहसान।
और ये कि मसलन हम ये कहें कि इस्लामी नुक्ता नगाह से, जैसा कि आपने सवाल पूछा इस्लामी नुक्ता नगाह से कैसा है, तो इस्लाम कुछ मवारिद में कह रहा है, उनमें से एक ये कि आपने अगर अपने नकाब में ये शर्त रखी है कि मैं अपने सास ससुर के साथ या अपने ससुराल में नहीं रहूंगी, आप ससुराल में जेठ देवर नानी ये सब आ सकते हैं, मैं इनके साथ नहीं रहूंगी, मुझे अलग घर चाहिए, हाँ उस सूरत में शोहर को अलग घर का इंतजाम करना चाहिए। या जो है वो इस्लाम कह रहा है कि अगर उसने निकाह में शर्त नहीं रखी लेकिन उसके ससुराल में उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा, क्योंकि इस्लामी नुक्ते नगाह से अपनी बीवियों के साथ कैसा सलूक करो, वह आशिरोहुन्ना बिल मारूफ,
सही,
अगर जो है वो मुतारिफ तरीके से उसके साथ सलूक नहीं हो रहा, या काम की ज्यादती, या जो है वो उसकी इज्जत नफ्स को मजरू किया जा रहा है ससुराल में, हाँ उस सूरत में भी बीवी अलग घर का मुतालबा कर सकती है। या जो है वो एक और चीज कि हमारा उर्फ क्या कह रहा है, हमारा मुआशरा क्या कहता है, आया मुआशरे की निगाह से ये देखें, बाज़ूकात इस्लाम भी कह रहा है कि इस्लामी कवानीन के साथ साथ अपने उर्फ को भी मद्देनजर रखो, कि इस्लाम ये हुक्म दे रहा है, आया मुआशरा भी इसे एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं करता। देखिए, वाजिब जो इस्लाम ने वाजिब करार दिया है वो तो वाजिब है, जो हराम कह दिया है वो तो हराम है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास चॉइस है।
सही।
वहां पे देखिए इस्लाम कहता है, इस्लामी नुक्ता नगाह से अलग घर बीवी अलग घर का मुतालबा कर सकती है, ये इस्लामी नुक्ता नगाह है, लेकिन आया मुआशरा, आया उर्फ इस चीज की इजाजत देता है, आया ऐसी बहू को मुआशरे में किस निगाह से देखा जाएगा। और अगर जो ये जो है वो किसी शरी प्रॉब्लम की वजह से, मसलन अगर उनके जेठ के या जेठ के बेटों से जो है उन्हें पर्दे का प्रॉब्लम है, पर्दा नहीं कर सकती, या और कोई शरी मुश्किलात हैं, तो उस सूरत में भी ये अलग घर का मुतालबा कर सकती हैं और अपने शोहर को, अपनी सास को एतमाद में ले सकती हैं। अपनी सास से ये भी कह सकते हैं कि आप आए हमारे साथ रहिए,
सही
देखिए, अगर उन्हें सास से कोई मुश्किल नहीं है उस सूरत में, लेकिन अगर शोहर देख रहा है कि बीवी और माँ को मैंने एक साथ रखा हुआ है, वो सिर्फ इन्हें इकट्ठा एक साथ एक घर में रखना चाहता है, लेकिन उसका नतीजा क्या है कि दोनों एक दूसरे की इज्जत और एहतराम नहीं करती,
सही,
दोनों में मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, तो उस सूरत में जो है वो बेहतर है कि इंसान प्यार और मोहब्बत के साथ अलग हो जाए। लेकिन जो है वो फिर भी मैं आखिर में भी यही कहूंगी कि वो माँ जो है वो बेटे की जिम्मेदारी है और बेटा जो है वो इससे आंखें नहीं चुरा सकता।
बिल्कुल, और हमारा जो उर्फ है, अगर हम हिंद और पाक की जाने पर थोड़ा सा निगाह करें, निगाह डालें, तो हमें दिखाई देगा कि वहां पर अभी भी ज्वाइंट फैमिली का जो एक तस्वुर है वो अभी भी बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमीर फातिमा अलवी साहब, बहुत खूबसूरत नुकात की जाने इशारा कर रही है। एक और अगला सवाल ये भी कश्मीर से ही आया है कि पूछने वाले पूछते हैं जी कि शोहर माँ और बीवी के दरमियान में ये जो एक रिश्ता है इसको कैसे बरकरार रखे, कैसे बैलेंस रखे और ये दोनों रिश्तों में तवाजुन बरकरार रहे।
मुझे याद है लास्ट प्रोग्राम हमारा इसी मौजू पे खत्म हुआ था कि एक मर्द का क्या, शोहर का क्या किरदार है।
सही, बिल्कुल,
तो यहीं पे मैं उसी को बढ़ाऊंगी, और उससे पहले कि मैं वाजिया तौर पे इसका जवाब दूं, देखिए शोहर को ये चाहिए कि वो माँ के हकूक और बीवी के हकूक
सही
दोनों का अगर तो जानता है, उसके इल्म में है, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानता तो उनका मुतालिया करे कि मेरी माँ के क्या हकूक हैं और मेरी बीवी के क्या हकूक हैं, और मुझे माँ के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, मुझे बीवी के साथ किस तरह पेश आना चाहिए। जैसा कि कुरान करीम में सूरह लुकमान की आया नंबर 14, सूरह अहकाफ की आया नंबर 15 में खुदा जो है वो माँ की जहमतों को बयान करते हुए माँ क्या हक बयान कर रहा है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्नो सलूक के साथ पेश आओ। इसी तरह जो है वो हमें रवायात में भी मिलता है, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मनकुला एक रवायत में है कि रसूल ग्रामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और आके पूछता है कि या रसूलल्लाह मेरे पे सबसे ज्यादा किसका हक है, मैं किसके साथ सबसे ज्यादा नेकी करूं, तो आपने फरमाया तुम्हारी माँ का। उसने दूसरी मरतबा पूछा, आपने फरमाया तुम्हारी माँ का। तीसरी दफा पूछा, आपने फरमाया तुम्हारी माँ का। और चौथी दफा पूछने पे फरमाया तुम्हारे बाप का। यानी ये कि जब उसने सवाल किया कि तमाम कायनात में से, खलायक में से कौन सबसे ज्यादा इस काबिल है कि मैं उसके साथ नेकी करूं, तो आपने तीन दफा माँ 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 और चौथी दफा आपने बाप का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो ये तो थे माँ के हकूक, यानी माँ जो है वो हस्ती है जो अपने औलाद से बहुत मोहब्बत करती है और उसी मोहब्बत की वजह से वो अपने औलाद की खातिर बहुत सी तकालीफ बर्दाश्त करती है, बहुत सी मुश्किलात का सामना करती है, और कुरान और अहादीस में उन मुश्किलात की बुनियाद पे जो है उन मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए माँ के हकूक को बहुत वाजिया तौर पे बयान किया गया है। आप दूसरी तरफ बीवी है, खुदा जो है वो और
बिल्कुल अमीन फातिमा अलवी साहिबा, इससे पहले कि आप बीवी के हकूक की तरफ थोड़ा सा इशारा करें, चलते हैं आमना के सेगमेंट की तरफ। जी आमना
जी। नाजरीन, जैसे सर्दियां शुरू होते ही लोग ड्राई फ्रूट, कॉफ़ी और सूप की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं इंसान के जिस्म को हरारत बख्शती हैं और गर्माहट देती हैं, जिसकी वजह से ये इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब कॉफ़ी पीने वालों को अपनी आदत के पुख्ता होने का एक नया और दिलचस्प बहाना मिल गया है। तिब्बी माहिरीन ने एक मुश्तरका तहकीक में यह इंकशाफ किया है कि कॉफ़ी पीकर अल्जाइमर के मरज से महफूज रहा जा सकता है। तहकीक में ये बात सामने आई है कि दिन में 3 कप कॉफ़ी पीकर अल्जाइमर के मरज से 20% तक कमी लाई जा सकती है। तो नाजरीन, आज से ही कॉफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा पीना शुरू कर दें, और चाय बेशक कम पिएं लेकिन कॉफ़ी का इस्तेमाल करें, क्योंकि कॉफ़ी एक ऐसा बीज है कि जो जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है विटामिन और बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो इंसान को मुज़र नहीं पहुंचाती हैं बल्कि फ़ायदा पहुंचाती हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। देखते रहिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, लेकिन अभी चलते हैं खैरुन्निसा के सेगमेंट की तरफ। जी खैरुन्निसा।
बहुत बहुत शुक्रिया आमना आपका। जी हाँ नाज़रीन, बात हो रही है बहुत ही अच्छे और ख़ूबसूरत टॉपिक पर, और वो है मशवरा और मुदाखलत के बारे में कि सास और बहू, ससुराल, नन, देवर, जेठ, इनको किस हद तक एक दूसरे की ज़िंदगी में मुदाखलत करनी चाहिए, इस्लाम का क्या नज़रिया है। आइए चलते हैं अगला सवाल पूछते हैं अपने मोहतरम मेहमान से। जी अमरीन फातिमा अलवी साहिबा, जहाँ आपने बात की कुछ हकूक के बारे में जो एक माँ के मुतालिक है, और उसके साथ साथ बीवी के बारे में भी आप थोड़ा सा इशारा करें।
जी, टाइम की किल्लत की वजह से मैं जो है बहुत मुख्तसर तौर पे बयान करूँगी। देखिए, इस्लाम बीवी के बारे में कह रहा है, सबसे पहला जो हमें उसूल नज़र आता है इस्लामी, वो ये है कि हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, यानी वो हस्ती है इसका जो है, अगर लुब्बे लबाब बयान किया जाए, जो आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए शरीक हयात का वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कि बीवी शरीक हयात है। देखिए, माँ को शरीक हयात करार नहीं दिया गया, बाप को शरीक हयात करार नहीं दिया गया, बहन भाई किसी रिश्ते को भी जो है वो शरीक हयात नहीं कहा गया। इन्हें शरीक हयात कहा गया क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी का एक तुलानी दौर जो है वो एक साथ गुजारना है। इसके अलावा इस्लाम वही जो मैंने पहले भी अर्ज किया फरमा रहा है, वह आशिरुहुन्ना बिलमारूफ, के उनके साथ हुस्ने सलूक के साथ पेश आओ, अच्छे तरीके से उनके साथ बर्ताव करो। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बीवी के साथ मोहब्बत ईमान की ज्यादती का सबब बनती है। और यहीं पे मैं ये भी अर्ज करती चलूं कि शादी करने से वैसे ही निसफ ईमान कामिल हो जाता है, तो जो हस्ती आपके निसफ ईमान को कामिल कर रही है, आपको उसके साथ किस तरह पेश आना चाहिए। तो मुख्तसर तौर पे मैं ये अर्ज करूं कि देखिए, रसूल ग्रामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के चंद सुनहरी असूल हैं, वो कौन से हैं? खानदानी असूलों कवानीन की पाबंदी, एक दूसरे का एहतराम, बाहमी मशवरे और रजामंदी से किसी काम को अंजाम देना, खानदान में बीवी के लिए अहम और मुस्तकिल शख्सियत का कायल होना, क्योंकि माँ के लिए अहम और मुस्तकिल शख्सियत का कायल मर्द ऑलरेडी होता है, उसके लिए मुझे जो है वो इसरार करने की या कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन बीवी के लिए अपने खानदान में, क्योंकि बीवी बाहर से आई है, उसके लिए आप अहम और मुस्तकिल शख्सियत का कायल हो। खवातीन की, अब खवातीन माँ और बीवी दोनों, उनकी जरूरियात और उनके जज्बात का ख्याल रखें, क्योंकि माँ के जज्बात आपके लिए ममता के हवाले, ममता के जज्बे के तौर पे हैं, और बीवी के जज्बात और बीवी की जरूरियात जो हैं वो इस रिश्ते को मद्देनजर रख के आप सोचें। और ये जो है वो रसूल ग्रामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के वो सुनहरी असूल हैं जिन पे अमल करके एक मर्द माँ और बीवी के रिश्ते में बैलेंस रख सकता है। और इसको अगर एक जुमले में कहना चाहूँ तो वो यही होगा कि तरफेन के हकूक की बर वक्त अदायगी।
बिल्कुल अमीन फातिमा अलवी साहब, ऐसा हरगिज़ नहीं है इस्लाम में कि अगर एक शख्स अपनी माँ के हकूक अदा करे तो वो अपनी बीवी के हकूक अदा नहीं कर सकता। नहीं, ये दोनों हकूक एक दूसरे के मध्य मुकाबले में हरगिज़
देखिए, आजकल खवातीन एक सवाल पूछती हैं बासकत अपने शोहरों से कि आपके दिल में मेरे लिए कितनी मोहब्बत है, आपकी माँ की मोहब्बत ज्यादा है आपके दिल में या मेरी मोहब्बत ज्यादा है। देखिए, यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि दिल में इतनी वुसअत होती है कि माँ और बीवी क्या है, औलाद, बहन भाई, बाकी रिश्तेदार, दिल ये नहीं, वो खून का लोथरा थोड़ी हमारी मुराद है कि ये दिल है इसमें जो है वो कितनी, आप जो है वो आधे में माँ आधे में बीवी, बाकी औलाद और ये सब कहाँ जाएंगे, नहीं।
और जो है बिल्कुल बीवी को ये बात बहुत ही गवार गुजरती है कि अगर खुदा ना खास्ता उसका शोहर माँ का लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल करे कि मुझे तुमसे ज्यादा माँ पसंद है। बिल्कुल,
देखिए, माँ ने अपनी औलाद के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, और ये बीवी को सोचना चाहिए, घरेलू टेंशन को कम करने में बीवी का बहुत किरदार होता है, और शोहर भी अपनी बीवी से ये तवक्को रखता है। जब शरीक हयात है तो हर चीज में शरीक हयात है ना, ये तो नहीं कि खुशियों में है और गम में नहीं है। आपको एक बीवी को अपने सास और ससुर के साथ इस तरह का बर्ताव करना चाहिए कि उसका शोहर देखे और सोचे, देखे ये मेरे माँ बाप का कितना ख्याल रखती है, और यही कि ये कितना ख्याल रखती है, कितना एहतराम करती है मेरे माँ बाप का, ये इस चीज का बायस बनता है कि आपका शोहर उतना ही ज्यादा आपका एहतराम करे, उतनी ही आपको अहमियत दे, अपनी जिंदगी में जो है आपको फोकियत दे। ये कि जगह जो है वो इंसान को खुद बनानी है, और शोहर जो है वो बीवी से ये तवक्को रखता है कि बीवी उसके मसाइल को समझे, उसकी घरेलू प्रॉब्लम्स को समझे और उनको हल करने में।
अम्बीन फातिमा अलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे तो बहुत सारे सवाल हमारे पास है लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से नहीं पूछ सकते, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आमना, आपका भी शुक्रिया। जी हां नाज़रीन, आप सबके बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत सारे सवाल आप भेज रहे हैं, और मैं यहीं पर एक नाम लेना चाहूंगी मीर इतरत हैदरी का, और ये भी श्रीनगर कश्मीर से एक बहुत ही अच्छा सवाल भेजते हैं, इंशाल्लाह हम उनके जवाब देंगे एक नेक्स्ट प्रोग्राम में। और आप तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हैं कि जो आप हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं, कमेंट्स और सजेशंस और ये तमाम चीज़ें हमारे लिए भेजते हैं, और ये भी बताएं कि आप हमारे इस प्रोग्राम को कितना पसंद करते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, इल्तमास दुआ।